نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سلسلے میں آج ہم نبوت کے ملنے سے بات کو شروع کریں گے. پچھلی نشستوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ کے نبی کا بچپن بھی پیارا تھا اور بچپن میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہونے والے اور ماں کی محبت سے جدا ہونے والے بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حکمت دی تھی کہ وہ کام جو بڑے بڑے لوگ نہ کر پاتے وہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہوتا. اور آپ اپنے اعلی اخلاق اور اپنی عادات کی وجہ سے صادق اور امین کہلا چکے تھے. اب آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کے قریب پہنچ چکی تھی اور اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنہائی پسند ہو گئی, یعنی جو نبوت کی کچھ علامتیں آپ کے اندر شروع ہو گئی تھیں وہ مختلف روایتوں کو جمع کریں تو اس میں ایک یہ ہے کہ آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی تھیں. آپ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستو اور پانی کا انتظام کرتی. آپ کوہ حرا, جہاں غار حرا ہے, وہاں چلے جاتے اور کئی کئی دن تک وہاں رہتے, اور بعض دفعہ یہ خود بھی جاتی, تھوڑا سا ہٹ کے وہاں سے بیٹھتی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہاں عبادت کرتے, خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں. جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو آپ اس غار میں رہتے, کھانا کھلاتے غریبوں کو, اللہ کی عبادت کرتے, اسی طرح کائنات پہ غور اور تدبر کرتے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا لفظ جو ہے یہ بڑا وسیع المعنی ہے. صرف بیٹھ کے نماز پڑھنا یا جائے نماز پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھنے کا نام عبادت نہیں, مختلف قسم کی کیفیات ہوتی تھیں. اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اللہ تعالیٰ اس وحی کے بوجھ کے لیے تیار کر رہے تھے. یہاں ہم اپنے عمل کے لیے بھی ساتھ ہی ساتھ بات دیکھتے جائیں کہ ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا دین سیکھیں, لیکن سیکھ کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ اس کے لیے فوکس نہیں ہوتے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ مکے کے بازاروں میں ہی آپ چل پھر رہے ہوتے, کام کاج کر رہے ہوتے, اور اتنے میں جبرائیل آتے اور اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیتیں اتارتے؟ ایسا نہیں ہوتا. ہم میں سے جس کو بھی اللہ کے دین کے لیے خالص ہونا نا, علم کے لیے یکسوئی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. افسوس کی بات یہ کہ آج کے دور میں اتنا ہمارے ارد گرد ڈفرینٹ چیزوں کا زور و شور ہے, ہمارے ذہن مطمئن نہیں, ہمارے ہاتھوں میں سیل فونز پکڑے رہتے ہیں, ہم ایک کمرے میں ہونے کے باوجود ہمارا ذہن اس سے باہر ہوتا ہے, ہم کہیں بھی چلے جائیں تو ہمیں تنہائی نہیں نصیب ہوتی. لیکن علم کو پانا ہے نا, تو اس کے لیے جیسے باہر کی خاموشی چاہیے ہوتی ہے, اسی طرح اندر کی خاموشی بھی چاہیے ہوتی ہے. آپ کا ذہن کچھ اور سوچے, آپ کے ذہن میں کئی چیزیں ایک اسکرین کی طرح چل رہی ہوں تو آپ علم نہیں پا سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب تورات دینی تھی تو اس سے پہلے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا گیا تھا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیفیت موجود تھی. اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نبوت کے کاروان کے آخری سالار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنتا. اسی طرح معمول کی عبادت تھی, آپ غار حرا میں موجود تھے کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے. اس سے پہلے ایک اور علامت جو آپ تک آ چکی تھی آپ کے نبی ہونے کی, وہ سچے خواب تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کو سچے خواب آنے لگے تھے, اور اسی لیے نبوت سچے خوابوں کو نبوت کا 46واں اور بعض جگہ کچھ اور تھوڑے فگر کے تبدیلی کے ساتھ حصہ کہا گیا. یعنی نبیوں کی جو علامتیں ہوتی ہیں انہی میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سچے خواب ہوتے ہیں. کہتے ہیں 3 سال ہو گئے تھے اللہ کے نبی کو غار حرا میں جاتے اور آتے ہوئے کہ اب اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. کب آئے؟ کہتے ہیں کہ رمضان کی 21 تاریخ تھی اور 2 شنبہ کی رات تھی. اگر عیسوی حساب سے دیکھا جائے تو یہ اگست کی 10 تاریخ بنتی ہے, 610 عیسوی. यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 610 साल के बाद, और आपकी उम्र मुबारक 40 साल 6 महीने और 12 दिन थी, कुछ ऊपर कुछ नीचे था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़े खूबसूरत तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने को साबित को नकल करती हैं कि किस तरह से ये हुआ। तो वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा नींद में सच्चे ख्वाबों के ज़रिए से हुई। पहला तरीका कैसे हो गया? ख्वाब आते थे, जो रात को ख्वाब में देखते वो सुबह बिल्कुल वैसे हो जाता जैसे कि सुबह रोशन होती है। इस तरह फिर आप तन्हाई पसंद हुए, गारे हिरा में जाने लगे, कई कई रातें वहाँ रहते, इबादत में मसरूफ़ रहते, तोशा ख़त्म हो जाता तो वापस आ जाते और इस तरह फिर वापस चले जाते। इतने में ही एक दिन आपके पास अल्लाह का नबी आया, और वो कौन था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। यहाँ ये चीज़ नोट कीजिएगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल में नहीं आए थे। अभी इंशाल्लाह हम वही की किस्मों को डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको इसकी मज़ीद तफसीलात बताऊँगी। लेकिन जिब्राइल आए और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम से कहा कि इकरा। गौर कीजिएगा इस लफ्ज़ पे, उम्मते मुस्लिमा को पहला हुक्म दिया जा रहा है, उम्मते मुस्लिमा को पहला पैगाम दिया जा रहा है, और वो अमर के सीगे में हुक्म है, और वो क्या? पढ़ो, रीट। कौन सा पढ़ना? बिस्मी रब्बी का, अपने रब के नाम के साथ। आज इकरा का तो ज़ोर बहुत है, तालीम का तो शोर व गुल है, और दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ की भरमार है, इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, लेकिन बिस्मी रब्बी का लफ्ज़ गायब है। कि हत्ता के साइंस पूरी पढ़ जाते हैं, सूरज चांद सितारों की तहों को जाके देख आएंगे मशीनों के ज़रिए से, लेकिन रब से नहीं जुड़ते। इस्लाम ने एक पैगाम दिया कि चाहे इंसान दुनिया की तालीम हासिल करे या चाहे दीन की तालीम हासिल करे, दोनों सूरतों में जो उसका लुबे लुबाब होगा कि वो रब की मार्फत पा ले। और हकीकत है कि जितनी मोहब्बत अल्लाह ताला से इस कुरान पाक को पढ़ने के दौरान होती है, उतनी ही मोहब्बत साइंस की किताब को पढ़ने के दौरान भी हो सकती है। जोग्राफिया और हिस्ट्री पढ़ते हुए भी अल्लाह ताला से ताल्लुक़ महसूस हो सकता है। लेकिन जिस उम्मत को पैगाम दिया गया पढ़ो अपने रब के नाम के साथ, आज उस उम्मत का पढ़ने लिखने के साथ क्या ताल्लुक़ है? ये बात किसी के कहने और सुनने की नहीं। आज तो ऐसा लगता है कि पहला हुक्म था कुल, खाओ, खूब खाओ, वशरब, पियो, एल्बिस, पहनो। क्या आज उम्मत खाने पीने और पहनने उड़ने में नहीं खो गई? आज हमारे पास वक्त क्यों नहीं है अल्लाह की किताब के लिए? हम कहाँ जाते हैं? हमारी मसरूफियत कहाँ होती हैं? हर एक सोच सकता है, लेकिन अल्लाह ने पैगाम दिया कि ये वो उम्मत है कि जिसको पढ़ने लिखने का काम करना है। क्योंकि पिछली जो दो उम्मतें थी जिन तक पैगाम आए थे, उन्होंने इस पैगाम की हिफाजत नहीं की। अल्लाह वो पैगाम देना चाहते थे जो क़यामत तक के इंसानों की रहनुमाई के लिए एक संगे मील की हैसियत रखता था। और आप देखेंगे कि बाद में अल्लाह के नबी पे एक पूरी सूरत नाजिल हो गई, सूरत कलम के नाम पे। नून वल कलम वमा यस्तुरून। नून कसम है कलम की और उसकी जो उससे लिखते हैं। तो लिहाजा पढ़ने लिखने की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। जब उन्होंने कहा पढ़ो तो अल्लाह के नबी पढ़ नहीं सके। उन्होंने फिर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने इंसान को एक लोथड़े से पैदा किया, और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लाह के नबी आगे से क्या कह रहे थे? वमा अना बिकारियुन, मैं कारी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्योंकि आप इलिटरल थे, आप पढ़े लिखे नहीं थे। अल्लाह ताला ने वही की हिफाजत के लिए ये इंतज़ाम किया था कि आप पहले से पढ़े लिखे नहीं थे, वरना इस बात का शुबा हो जाता कि इस पैगाम में आपने अपनी अक्ल भी इस्तेमाल की, अपनी मंतक भी इस्तेमाल की। बहरहाल जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लम के सीने को भेजा, जैसे किसी को सीने से लगा के आप झंझोड़ते हैं ना, एक दो बार ऐसा किया। जिब्राइल के पीछे नहीं पड़ा आपने? मुफस्सरीन कहते हैं कि अगर नबी सल्लम जिब्राइल के कहने के दौरान पीछे दोहरा लेते तो फिर जिब्राइल तो अल्लाह के नबी के उस्ताद बन जाते, और अल्लाह के नबी का मुकाम इससे बुलंद था। इसलिए वो उनके पीछे नहीं पड़े, लेकिन जब उनको छोड़ दिया अल्लाह ताला ने उनके नबी सल्लम के सीने में खुद ही अपना ईमान और नूर भरा कि फिर आपने पढ़ा इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक। और उसके बाद जब अल्लाह के नबी घर आए, आपका दिल धक धक हो रहा था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी प्यारी बीवी थी, आपने जाके कहा ज़म मेलूनी ए खदीजा, मुझे चादर उड़ा दो, ए खदीजा मुझे चादर उड़ा दो। यानी आपको इतनी खशियत और इतना खौफ था, आप कहते इन्नी खशीतु नफ्सी, ए खदीजा मुझे अपनी जान का डर है। नहीं समझ सके कि क्या हुआ मेरे साथ, ऐसे लगा कि किसी ऐसी असेब ज़्यादा कुव्वत ने या किसी ऐसी ताकत ने मुझे झंझोड़ दिया। उस वक़्त फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार वही किरदार था जो आज की बीवी से भी मतलूब है। और जब बीवियां खदीजा जैसी हो जाती हैं तो मर्दों की भी तालीम और तदरीस का इंतज़ाम हो जाता है, और जब बीवियां हो जाती हैं सिर्फ़ ख्वाहिशें और तमन्नाएं और फरमाइशें करने वालियां, तो वो बस बड़े अच्छे अच्छे मर्दों को वहीं से दूर कर देती हैं और सिर्फ़ कमाने और खिलाने के अंदर ही उनको गर्क कर देती हैं। अल्लाह हमें ऐसी बीवियां बनाए कि हम अपने मर्दों के दीन की बेहतरी का सबब बने, और अल्लाह ऐसे मर्द बनाए कि जो अपनी बीवियों की दीनी तालीम का इंतज़ाम कर सके। कहने लगी गम क्यों करते हैं, आप तो इतने अच्छे काम करने वाले, आप सिला रहमी करते हैं, आप गरीबों का बोझ उठाते हैं, मदद करते हैं, आप मेहमानों की मेज़बानी करते हैं, आप तो इतने यानी हक पर जमने वाले हैं, अल्लाह आपको क्यों मुश्किल में डालेगा, गम ना करें। और इसके बाद पे हज़रत खदीजा आपको अपने चचाजद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गई, जो ईसाई बन चुके थे, इंजील पढ़ चुके थे, बूढ़े थे और उस वक़्त नाबीना हो चुके थे। हज़रत खदीजा ने जाके वहाँ उनको ये कहानी सुनाई कि मेरे शौहर के साथ ये मामला हुआ है, अब इनके साथ इनको आप तसल्ली दें। फिर वरका ने उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने क्या देखा था, आपने जो देखा था उसको बयान कर दिया। वरका कहने लगे ये तो वही काम मूसा है जो मूसा पर भी नासिल हुआ था। फिर कहने लगे काश इस वक्त मैं तवा ना होता, यानी मैं सेहतमंद होता तो मैं आपकी कुछ मदद करता। और फिर कहते हैं कि काश मैं उस वक़्त ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी कौम मुझे निकाल देगी, यानी ये तो मेरे से इतनी मोहब्बत करने वाले, ये तो जान निछावर करने वाले हैं, ये मुझे कैसे निकालेंगे। हर एक को शुरू में यही खुशफहमी होती है। हम जब तक अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आए होते, हम सोचते हैं कि जूं ही हम दीन का पैगाम अपने घरों और अपने ख़ानदानों की तरफ लेके जाएंगे, वो हमें सीने से लगाएंगे, वो खुशी मनाएंगे कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने तुम्हें दीन से जोड़ दिया। लेकिन आप ऐसी कोई खुशफहमी रख के मत जाइएगा, जिनसे आपको उम्मीद होती है ना कि वो फूलों के हार आपके गले में डालेंगे, वहाँ से आपको पत्थर पड़ेंगे और मुखालफत घर से शुरू होगी। वरका कहने लगे हाँ ऐसा इसलिए होगा कि आपसे पहले भी जो ये पैगाम लेके आया उसके साथ ऐसे ही हुआ। यानी हक का तोहफा ये होता है कि अपने बेगाने बन जाते हैं और बेगाने अपने बन जाते हैं, इंसान के दोस्त उसके दुश्मन बन जाते हैं और उसके दुश्मन उसके दोस्त बनते हैं। फिर वरका कहते हैं कि अगर मुझे उस वक़्त अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन वरका आप उससे पहले ही फौत हो गए। ये थी वो पहली वही कि जिसके बाद फिर कुछ अरसा वही नहीं आई। उसके वक्फे में मुख्तलिफ इख्तलाफ है, लेकिन इस वक्त हम उस तरह पढ़ ही नहीं रहे कि हम छोटी छोटी बारीकियों पर बात करें। हम तो इस वही को देख रहे हैं कि आज के दौर में इसको कैसे लिया जा सकता है। अब वो उस वक़्त का एक तकलीफ़दह मरहला जो आप पे बड़ा बोझल पड़ा था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उसको मिस करते थे। एक दफ़ा जिब्राइल ये मंज़र दिखा के फिर वापस नहीं आए, तो आप इतने बेचैन हो गए, आपके खुद अपने कॉल मिलते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा अपनी कैफियत मुश्किल महसूस करता था कि बाज़ दफ़ा मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने आप को एक पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा दूँ। आपकी भी यही कैफियत होती है जब आपको अल्लाह के कलाम का एक मज़ा चखने के बाद वहाँ से दूर कर दिया जाए। हर एक को अपने आप को पूछे क्या आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते जो अल्लाह के नबी के दिल पे इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी की आयतों के नज़ूल के वक्त ही, वल्ला ही इसको कर सकते हैं। आज भी इल्म की महफिल और कुरान की महफिल में जब बैठते हैं तो जो तस्कीन और जो सुकून उतरता है, तो मैं सोचती हूँ कि यही ये हम तो गुनाहगारों की ज़ुबानों से निकलते हैं और हम गुनाहगारों के कान सुनते हैं ना, और दुनिया में सर से पांव तक लुथड़े हुए लोगों के पास कलाम जाता है तो दिलों को बहार देता है। अल्लाह के नबी का दिल जो सारी चीज़ों से पाक था, उनके दिल पे क्या सुकून नहीं आता होगा? आप कितना मिस नहीं करते होंगे। आप उस वक़्त कहते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा यानी इस चीज़ का एहसास होता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, और इतने में कहते हैं कि एक दफ़ा मैं यही सोच लेके निकला, और जब बिल्कुल बीच पहाड़ के ऊपर पहुंच गया तो आसमान से एक आवाज़ आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राइल हूँ। कहते हैं कि इस बात को सुनने के बाद जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो मैंने देखा कि जिब्राइल एक आदमी की शक्ल में उफक के अंदर पांव जमाए हुए खड़े हैं। यानी ये पहला मौका था जब आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से देखा। और कहते हैं कि जब मैंने उनको देखा तो इतना बड़ा, आप इतना बड़े थे कि ऐसे लगा कि पूरे आसमान पे सिर्फ जिब्राइल है। महसूस कीजिए ज़रा, अल्लाह के नबी ने इस दीन को हम तक लाने में क्या क्या मरहले देखे। और एक अलग रिवायत में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर है, और जिस वक्त अल्लाह के नबी ने उनको देखा था ना तो सिर्फ 2 पर खुले हुए थे, और इसके बावजूद अल्लाह के नबी को लगा कि पूरे आसमान पे हैं ही जिब्राइल। तो ज़रा अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर फरिश्ते कितनी बड़ी मखलूक है। आपकी उस वक़्त ये उनसे मुलाकात जो थी, इसने तो आपको और ही ज़्यादा परेशान कर दिया। कहती हैं कि अल्लाह के नबी यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्राइल को देखा, कहते हैं कि मैं वहीं ठहर के जिब्राइल को देखने लगा, और मैं जिस इरादे से वहाँ गया था उससे मैं गाफिल हो गया। गए तो थे खुद को पहाड़ से गिराने पे, और फिर कहते हैं कि मैं अब ना आगे जा सकता था ना पीछे, लेकिन आसमान पे मैं नज़रें डाल रहा था और जिब्राइल मुझे दिख रहे थे। मुसलसल खड़ा रहा, ना आगे बढ़ा ना पीछे, हत्ता कि खतीजा ने मेरी तलाश में कासिद को भेजा। यानी कि ये कहाँ रह गए, जैसे घर वालों को अमूमन फ़िक्र होती है कि कहाँ चले गए। और कहते हैं कि फिर जब मैं मक्का पलट आया और जिब्राइल भी चले गए, तो उसके बाद फिर कहते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास बैठ के मैंने टेक लगाया। फिर उस वक़्त उन्होंने पूछा, बड़ी तफसील से बात हुई कि आप कि ये क्या कैफियत है, यानी ये अनयूजुअल कैफियत थी ना जो आपके सामने हुई। फिर वरका बिन नौफल की जो बातें थीं, उन्होंने भी जब ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि मुबारक हो कि अल्लाह ने आपको उस नबी बना लिया। यानी ये वो कुछ अलामतें थी कि जिसकी वजह से उन दिनों में आपको नबी बनने का यकीन हो गया। फिर वरका बिन नौफल ने कहा कि आप साबित कदम रहिएगा, और हज़रत खदीजा ने आपको तसल्लियाँ दीं, आप इस्तकामत पर रहें, आप इस उम्मत के नबी होंगे। और इस तरह से होते होते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये यकीन हो गया कि मुझे अल्लाह ताला ने नबी बनाने के लिए, नबी नबूवत के लिए चुन लिया। अब इसके बाद वही नहीं आई, कोई कहते हैं 3 साल नहीं आई, कोई कहते हैं कुछ दिन नहीं आई, लेकिन उन्हीं दिनों के बाद दोबारा जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो उस वक्त फिर वो आपके लिए जो आयते लेके आए थे वो सूरत मुद्दसिर की थी, या अय्युहल मुद्दसिर से लेके वर्रुज़ फहजुर तक। सूरत मुद्दसिर 29वें पारे की सूरत है, और ये उस वक्त हुई थी जब आपने दोबारा उनको देखा था, यानी खुली आंखों से जब देखा तो उस वक्त लाए और नाजिल हुई। और अगर कभी ज़िंदगी रही या हम इस किसी मौके पे सिर्फ सूरह मुद्दसिर की तफसीर ही करके देख लेंगे कि उम्मत को पैगाम क्या मिल रहा है। पहला पैगाम है इकरा का, और दूसरा क्या है, या युहल मुद्दसिर। आगे क्या है आप लोगों को याद है तो पढ़िए, कुम फानजिर, कुम खड़े हो जाओ, फानजिर और डराओ। ये है उम्मत का मनहज कि पहले खुद सीखो, खुद पढ़ो और फिर उसके बाद दूसरों को सिखाओ। याद है आज ये मनसब किसी को, कुम फानजिर। फिर उसके बाद अगली आयतों में सूरह शुरा की आयतें नाजिल होंगी कि फानजिर व अनजिर अशीरतकल अकरबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। यानी उम्मत को पैगाम ही एक मिल रहा है कि उठिए, सोते ना रहें, उठ जाओ। आज फिर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को कुम फानजिर के पैगाम की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त उम्मत इज्तमाई तौर पे सोई हुई है। जब उम्मतें सो जाती हैं ना, तो फिर उनके दुश्मन उन पे गालिब आ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये दोबारा वही आई और आपको अल्लाह ताला ने ये पैगाम दे दिया, तो उसके बाद फिर अब आपने इस पैगाम की हकीकत को समझ लिया था कि अल्लाह ताला मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारी डाल रहा है, इसको मुझे अब पूरा करना है। तो यहाँ थोड़ी सी बात करूँगी कि आप पर जो वही आती थी, ये पैगाम, ये जो सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके सूरत अन्नास तक का जो पैगाम हम तक पहुँचा है, ये किन मुख्तलिफ ज़राए से पहुँचा है? क्या तरीके होते थे कि जिसके ज़रिए से वही उतरती थी? तो पहली कैफियत थी सच्चे ख्वाब। आप इसको तदरीजन भी लिख सकते हैं, बुलेट्स बना के पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि वही किस किस किस्म से आती थी। पहली चीज़ थी सच्चे ख्वाब आते थे, ये इब्तदाई कैफियत थी। दूसरा तरीका था वही के आने का कि फरिश्ता आपको दिखाई दिए बगैर आपके दिल में बात डाल देता था, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल मिलता है। आपने फरमाया कि रूहुल कुदस ने मेरे दिल में ये बात फूकी कि कोई नफ्स मर नहीं सकता यहाँ तक कि अपना रिस्क पूरा हासिल कर ले। बस अल्लाह से डरो और तलब में अच्छाई इख्तियार करो, और इसकी ताखीर तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम इसे अल्लाह की मासीयत के ज़रिए तलाश करो। दोबारा पढ़ो इस बात को, यानी रिस्क की ताखीर, रिस्क का देर से मिलना तुम्हें इस बात पे तैयार न कर दे कि तुम अल्लाह की नाफरमानियों के ज़रियों से रिस्क हासिल कर लो, क्योंकि अल्लाह के पास जो कुछ है वो इसकी इताअत के बग़ैर हासिल नहीं किया जा सकता। क्या अमल की बात है! जो रब नाफरमानियों से दे सकता है ना, या नाजायज़ तरीके से दे सकता है, वही रब जायज़ तरीक़ों से भी देगा। सोर्स उसी के पास है ना। अब देखिए कि मिसाल दूंगी माँ और बच्चे की। माँ ही बच्चे की ज़रूरियात पूरी करती है ना। बच्चे को पता है मुझे लंच भी माँ से मिलना है, स्नैक्स भी इसी से मिलने हैं, पैसे भी इससे मिलने हैं। एक माँ बच्चे को खुश हो उससे, खुश जो माँ अपने बच्चे से खुश होगी वो ज़्यादा देगी या नाराज़ होके ज़्यादा देगी? माँ बच्चे से खुश होती है ना, तो उसका तो दिल मचलता है कि मैं दूँ। मांगे ना मांगे माँ देती है, और कभी बच्चा बड़े ही मजबूर करे ना, तो माँ गुस्से में फेंकती है, ले लो मेरे से कलाम नहीं करना। कौन सा अच्छा तरीका है? अगर अल्लाह से उसकी रजामंदियों के साथ लेंगे ना, तो ये पहली मिसाल है। और अगर नाफरमानियों से रिस्क की फुहार भी पड़ रही है ना, घरों में छींटों के छींटे पड़ रहे हैं ना रिस्क के, तो वो ऐसे ही हैं कि जैसे कोई गुस्से से धुतकार दे और के ले लो मेरे से कलाम ना करना। लेकिन हम बात कर रहे थे वही इलाही के आने के तरीके की। तो दूसरा तरीका जो होता था, फरिश्ता नज़र नहीं आता था लेकिन नबी के दिल में बात आ जाती थी। तीसरा तरीका क्या होता था कि फरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आदमी की शक्ल इख्तियार करता था, आपको मुखातिब करता, जो बात वो कहते आप याद कर लेते। कभी कभी सहाबाए कराम भी फरिश्ते को देखते थे। इस किस शक्ल में? जब इंसानी शक्ल में आते हैं। यहाँ आपकी दिलचस्पी के लिए बता देती हूँ कि अमूमन जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिन सहाबी की शक्ल में आते थे, उनका नाम था दहया कल्बी। बड़े खूबसूरत सहाबी थे। दहया, दाल, हा, या, बड़ी हा जैसे होती है हदीस वाली, हा या, दहया कल्बी की शक्ल में आते थे। सहाबा को नहीं पता चलता था लेकिन अल्लाह के नबी को पता चल जाता था कि ये वो नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि असली शक्ल में फरिश्ता नज़र आ जाए तो कोई कायम कहाँ रहेगा? आपको यहाँ कोई जिन नज़र आ जाए या फरिश्ता नज़र आ जाए तो आप टिक नहीं सकते ना यहाँ, तो लिहाजा शक्ल बदल के आते थे। तीसरी, चौथी सूरत क्या थी वही के आने की? कि आपके पास घंटियों की आवाज़ आती थी, टन टन की आवाज़ आती थी, और ये कैफियत बड़ी सख्त होती थी आपके लिए, तकलीफ़ होती थी आपको, कि हत्ता के सख्त सर्दियों के दिनों में भी आपको पसीना आने लगता था, और इतना बोझ होता था कि आपकी जो आप जिस ऊँटनी पे सवार होते थे ना, वो उस बोझ से बैठ जाती थी। एक मौके पे ऐसा हुआ कि इसी तरह वही आई और नबी सल्लम की रान हज़रत ज़ैद बिन साबित, जो आपके कातिब थे, यानी आप कह रहे हैं पर्सनल सेक्रेटरी थे, वो इन आप नबी सल्लम से हदीस लिखा करते थे या वही जो उतरती थी तो वो लिखते थे, तो उनके ऊपर थी। तो इतना अल्लाह के नबी की रान का बोझ हो गया कि वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि मेरी टांग जो है वो टूट जाएगी इस बोझ से, इतना बोझ होता था। इसलिए अमूमन कभी सफ़र की हालत में जब ये कैफियत होती थी तो अल्लाह के नबी अपनी ऊँटनी से उतर जाते थे ताकि जानवर को तकलीफ़ ना आए। इसी तरह सूरत अल अनाम जब नाजिल हुई तो एक सहाबी हैं वो कहती हैं कि मैं आपकी ऊँटनी की नुकेल पकड़े हुए थी और इतना बोझ था कि ऐसे लग रहा था कि आपके बोझ से ऊँटनी की टांगें जो हैं वो हिलने लगी और वो टेढ़ी होने लगी। कितनी मुश्किलें सह के अल्लाह के नबी ने इस कलाम को अपने दिल पे महसूस किया। तो हमें इसकी उतनी ही कदर करनी है इंशाल्लाह। पांचवा तरीका होता था कि अल्लाह के नबी फरिश्ते को असली शक्ल में देखते, और ये पूरी ज़िंदगी में आपकी दो दफ़ा हुआ। एक हमने अभी देख लिया, पहली और दूसरी वही के बीच का जो अरसा था, और दूसरा मेराज की रात। सूरत नजम में इंशाल्लाह हम इसका किस्सा पढ़ेंगे जब कुरान पाक की तफसीर पे पहुँचेंगे। फिर इस तरह एक छठी किस्म होती थी वही की, और वो क्या थी कि आपको आसमान पे बुला के कुछ अहकामात दिए जाते थे, और ये मेराज की रात हुआ। मसलन नमाज की फर्जियत या सूरत बकरा की आखिरी जो दुआएं नाजिल हुई, इसमें आपको ज़मीन से उठा के आसमानों पे बुलाया गया। यहाँ भी गौर करने की ज़रूरत है कि पूरी शरीयत ज़मीन पे मिली और नमाज कहाँ मिली, आसमानों पे बुला के, ताकि ये साबित कर दिया कि अल्लाह के नबी की मेराज तो आसमानों पे जाके हुई और बंदे मोमिन की मेराज उस वक्त हो जाती है जब वो ज़मीन पे खड़ा नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसके दर्जों को बुलंद कर देता है। फिर इसके बाद सातवां तरीका क्या था कि फरिश्ते के वास्ते के बग़ैर अल्लाह सुबहाना ताला आपसे हिजाब में रहकर बराह रास्त गुफ्तगू करते थे, यानी कलाम किया अल्लाह ताला ने नबी सल्लम से लेकिन शक्ल नहीं दिखी। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी तो किया ना, मूसा को कलीमुल्ला कहते ही है कि अल्लाह ताला उनसे कलाम करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा मेराज की रात हुआ था। इसके बरक्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला ज़मीन पे भी होता था। बाकी रहेगी बात कि लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला को देखा भी था और आपके दीदार भी हुआ था, तो इस पे इंशाल्लाह हमारा शरह सदर है कि अल्लाह के नबी ने भी खुली आंखों से अल्लाह ताला को देखा नहीं, क्योंकि किसी के अंदर ये ताब ही नहीं है कि वो अल्लाह ताला को देखे। और इसके लिए फिर इंशाल्लाह ताला यही है कि जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला दिखाएगा। तो ये थे वो कुछ तरीके जिसके ज़रिए से ये प्यारा कलाम हम तक पहुंचा। अब हुआ क्या कि जब सूरत मुद्दसिर की आयतें नाजिल हो गईं कि या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंज़िर, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ में आ गया कि अब दीन जो मिल रहा है ना उसकी वजह क्या है। कुछ खुफिया पैगाम थे इस सूरत मुद्दसिर के। पहला पैगाम क्या था कि इंतज़ार, डराना, आगाह करना, टू वॉर्न, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो भी चल रहा होगा उसको अल्लाह की मर्ज़ी बताना, और ये उम्मत पे भी फ़र्ज़ है और अल्लाह के नबी पे भी फ़र्ज़ था। जहाँ कोई गलत काम होता देखा या देखेंगे वहाँ अगले को अच्छे तरीके से मना करना, उसको बताना, उससे रोकना, ये हर एक का फ़र्ज़ है। फिर उसमें वह रुज फहजुर की बात है, कपड़ों की गंदगी को पाक करो, व सियाब का फतहिर, अपने कपड़ों को पाक करो। इससे मुराद दिल का भी पाक होना है शिर्क और कुफर से और निफाक से, और ज़ाहरी पाकीज़गी की भी ज़रूरत है। आज हम दुनिया में गैर महज़ब और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि डिसऑर्गनाइज्ड उम्मत के तौर पे मशहूर हो गए कि जूँ ही हम अपनी जगहों पे आते हैं तो पता चलता है कि सफाई का इंतज़ाम जो है वो दूसरों से कितना मुख्तलिफ है। आप सिर्फ एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट का ही अगर एक ट्रैक सफ़र कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुसलमान मुल्क का एयरपोर्ट है या ये नॉन मुस्लिम मुल्क का एयरपोर्ट है। अल्लाह ताला ने दूसरी वही में पाकी का जिक्र कर दिया था, और अल्लाह ताला आज उम्मत को पाक और मुतहर रहने की तौफीक दे। अगली चीज़ सूरह मुद्दसिर से क्या मिली थी, वला तमनुन तस्तकसिर, एहसान करके कसरत ना चाहो कि किसी को कुछ दूँ ताकि वो मुझसे और ले, यानी अल्लाह के रास्ते में अगर कोई काम करने की तौफीक मिल जाए ना तो लोगों पे एहसान ना जताओ कि हमने आपके लिए ये किया और अब आप हमारी कदर करें। जिसने किया उसका बदला उसको वही देगा जिसके लिए उसने किया। फिर इसी तरह उस सूरत के अंदर ये भी पैगाम मिल गया था कि देखिए इस काम में हंसी उड़ाई जाएगी, आपको लोग सताएंगे तो आप उनसे उलझिएगा नहीं, लेकिन आप देखें तो जो पैगाम शुरू में उतरा ना उसमें पहली चीज़ तौहीद थी, अल्लाह को एक मानना, दूसरी चीज़ यौम आखरत पर ईमान, और तीसरी चीज़ तज़किया नफ्स। ये तीन बुनियादी पैगामात थे जो सूरत मुद्दसिर के ज़रिए अल्लाह के नबी को दिए गए। और इसी तरह फिर अल्लाह के सपुर्द करना, अपना आप सब कुछ रब के सामने रख दें। अगर वक्त होता तो मैं सूरत खुलवा के आपको एक एक आयत से ये सारे पैगाम दिलवाती, लेकिन सिर्फ़ इस वक्त मैं सीरत का वो पहलू सामने रखना चाहती हूँ कि दीन की तरतीब क्या थी, कौन सा हुक्म पहले दिया और कौन सा बाद में दिया, और इसी तरह फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानना। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये मामला हुआ और आपको ये सब कुछ बता दिया गया, तो अब आप पर ये जिम्मेदारी हो गई थी कि इस पैगाम को आगे लेके चलें। यहाँ एक जुमला नोट कीजिएगा कि इस कलाम को अपने तक लेना बहुत आसान है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से शायद 3 घंटे से ज़्यादा हो गए बैठे हुए, मुझे आप में से किसी एक के चेहरे पे थकन नहीं दिख रही, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है ना, कोई थकावट तो नहीं है ना। ये बहुत ही मज़े का सफ़र है, मुझे पूरा यकीन है अगर मैं आपको यहाँ 5-6 घंटे भी बिठाऊं तो आप ऐसे ही होंगे। वो जो बाहर बैठे होंगे ना, उनको आप पे तरस आएगा, हाय बेचारियाँ सुबह से गई हुई हैं, लेकिन आपको नहीं आएगा अपने ऊपर। ये महफिल ही ऐसी होती है, इसमें तो बंदा भीगा होता है, जैसे तौलिए को पानी में डाल के निकालते हैं ना, तो वो पानी में पूरा भीगा होता है, निचड़ता होता है, दिल यही होता है। लेकिन जो मुश्किल काम है ना, वो अगला है, और वो क्या है, कुम फानजर। अल्लाह के नबी के लिए वो लम्हे, वो वक्त बड़े ही खूबसूरत होते थे जब आपके ऊपर वही उतरती थी, आप कुर्ब महसूस करते थे अल्लाह का। लेकिन असल मरहला क्या था कि अब दावत दो। तो अल्लाह के नबी की मक्की ज़िंदगी का जो दावत का मिशन था ना, उसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इस सफ़र के साथ आपको तबलीग की हिकमत भी समझ आएगी। जब आपको ये दावत दे दी गई कि अब आप दूसरों तक पैगाम पहुंचाएं, तो आपने उस पैगाम को कैसे पहुंचाया, इंशाल्लाह हम इससे अगली चीज़ों में इसको साथ लेके देखेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा खुलासा उसका अभी देख लेते हैं। मक्की ज़िंदगी 13 साल की थी, मदनी ज़िंदगी 10 की थी। मक्की दौर किसको कहते हैं? मदीना हिजरत करने से पहले का दौर। और मदनी दौर कौन सा है? हिजरते मदीना से लेके आपकी वफात तक, फतेह मक्का तक नहीं, आपकी वफात तक। मक्की ज़िंदगी को हम 3 मरहलों में देखेंगे इंशाल्लाह ताला अपने इस सफ़र में। पहला दौर क्या था? ढकी छुपी दावत, खुल के नहीं थी, अंदर खाते थी, हिडनली, पसे पर्दा दावत का मरहला। ये था सन 1 नबवी से लेके 3 तक, यानी नबूवत के पहले 3 साल तक आप लोगों को छुप के खुफिया तरीके से तबलीग करते थे। और इसकी वजह बड़ी साहिर है, पैगाम नया था, हर तरफ मुखालफतें थीं, दुश्मनियाँ थीं, और इंशाल्लाह हम एक एक दौर को अलग से देखेंगे। दूसरा दौर क्या था? अहले मक्का में खुल्लम खुल्ला दावत का, तबलीग और दावत। ये थी 4थे साल से लेकर 10वें तक, आपकी नबवी ज़िंदगी के 4थे से 10वें साल में खुल के दावत हुई, इसीलिए फिर जुल्म और सितम की भी इंतहा हो गई। और उसके बाद 10वें के बाद से लेके हिजरते मदीना तक का दौर क्या था कि मक्का के बाहर इस्लाम की दावत फैलनी शुरू हो गई, और बिल आखिर फिर उसके बाद मदीना हिजरत होती है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को जिस काम के लिए चुना था, हकीकत में वो बड़ा खूबसूरत काम था। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह ताला हम इस सारे मरहले को देखेंगे। कोई सवाल अभी जो बात सुनी उसमें से है? दिल तो नहीं चाह रहा मैं छोड़ूं यहाँ इस टॉपिक को, लेकिन जी जी मैं समझ, आपका सवाल मैं समझ गई। ये इनका सवाल है कि नबूवत मिलने से पहले अल्लाह के नबी जो गारे हिरा में इबादत करते थे, वो क्या होती थी, या नमाज कैसे पढ़ते थे? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, शाबाश। इसको मैं वाजे कर देती हूँ कि नमाज हर दौर में रही है, हर नबी को। हज़रत इब्राहिम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो पहला कलाम क्या किया था कि इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वल हिकमा, और उसके आगे नमाज का जिक्र करते हैं कि अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया। तो बात क्या है कि अल्लाह की इबादत मुख्तलिफ तरीके से होती थी। इस वक्त जो नमाज इस शक्ल में मौजूद है ना, इतने फ़राइज़ इतनी सुन्नतों के साथ, या एक रुकू और दो सजदे और इस तरह, ये मेराज के मौके पे, और वो इंशाल्लाह हम इस किताब के सफ़र में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप अल्लाह को याद करते थे, जैसे कोई भी तरीक़ेकार हो सकता है, आप रोज़े भी रखते थे। और यहाँ फिर ना भूलिए कि मक्का वाले मुसलमान लोग थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद थी। ये अलग बात है कि उन मुसलमानों में इतना बिगाड़ आ गया, इतना शिर्क आ गया कि बुत प्रस्त हो गए। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज के किसी मुशरिक को कब्र पे खड़े हुए को आप देखें और आप उसे बोले तुम मुसलमान नहीं हो ना, तो वो आपका आपका गिरेबान थाम लेगा। आप होते कौन है मुझे मुशरिक कहने वाले? तो आप कहेंगे ये आप क्या कर रहे थे? वो कहेंगे नहीं, वो तो अल्लाह है, ये तो बस हम इनको वैसे ही बीच में ला रहे हैं। आज कब्रों पर जाके शिर्क होता है, या जिंदा पीरों के सामने जाके, या कुछ कहानियाँ, उस दौर में लोग बुत बना लेते थे। ठीक है, तो इबादत के तरीके हर दौर में थे, बिगाड़ के दौर में भी इबादत तो रहती। जी आप ठीक है, चले अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा हुआ। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।